सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं सयलोवसगणिवः संवरणेनेव जस्सफिट्टन्ति पाशस्तसणमिं पाषणयोऽं परुवेमो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। 13वीं पुस्तक जो पंचम खंड वर्गणा खंड, उसमें अभी हम कर्म अनुयोग द्वार की बात अपनी चल रही है और हम पृष्ठ संख्या 90 पर आ गए, 90। एक कर्म के हमने अलग अलग प्रकार देखे थे, उसके नाम हमने कहा 38 पर देखे थे ना, हाँ 38 पर। ये भाव कर्म 10वां अंतिम भेद है, देखो जरा वो भेद हम देख रहे थे। 38 पृष्ठ पर 4 नंबर का सूत्र, नाम कर्म, स्थापना कर्म, द्रव्य कर्म, प्रयोग कर्म, समवदान कर्म, अधक कर्म, इरियापथ कर्म, तपक कर्म, क्रिया कर्म और भाव कर्म। उसमें से ये भाव कर्म अभी बात अपनी चल रही है। पढ़ते हैं 29 नंबर का सूत्र, 90 पृष्ठ। जम तम भाव कम्मम नाम। अब भाव कर्म का अधिकार है, इसके अर्थ का प्ररूपण करते हैं। उवजुत्तो पाहुड़ जानगो तम सवम भावकम्मम नाम। जो उपयुक्त प्रावृत का ज्ञाता है वह सब भाव कर्म है। हमने पहले ही द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप बहुत बार देखा है। द्रव्य निक्षेप किसको कहते हैं? विशिष्ट प्रावृत का ज्ञाता, परंतु उसमें उपयोग नहीं है ऐसा जी। और भाव निक्षेप किसको कहते हैं? वो ज्ञाता परंतु उसी में उपयुक्त, उसको भाव कहते हैं। तो यह कर्म की बात है, कर्म प्रावृत के ज्ञाता। नीचे लिखा है देखिए, कर्म प्रावृत का ज्ञाता होकर जो उपयुक्त है, उपयुक्त है ना उपयोग वाला, उसी में उपयोग जिसका है वह भाव कर्म है। क्योंकि उपयुक्त है ना, हम उपयोगी ऐसा लौकिक उसमें से अर्थ नहीं निकालना, विशेषार्थ। सूत्र में आगम भाव कर्म का लक्षण कहा, इसको कहते हैं आगम भाव कर्म, या आगम भाव निक्षेप या आगम द्रव्य निक्षेप। उसमें वो प्रावृत के ज्ञाता वाले की बात करते हैं, और जो ज्ञाता नहीं है उसको नो आगम कहते हैं। इसका दूसरा भेद नो आगम भाव कर्म है। प्रकृत में भाव कर्म के प्रथम भेद आगम भाव कर्म का ही सूत्र में निर्देश है। इसको नहीं, नो आगम भाव कर्म में अन्य की बात है जो ज्ञाता नहीं है। जैसे द्रव्य निक्षेप में हम कैसे लगते हैं आगम और नो आगम? आगम में क्या लिखते हैं तो लगाते हैं? ज्ञाता जी, उपयोग से रहित। और नो आगम में क्या लगाते हैं हमें? आपको याद है वो ज्ञायक शरीर, यानी उसका शरीर। शरीर तो कुछ ज्ञा, हाँ। तो इसमें भी भाव में भी वो तद व्यतिरिक्त वगैरह सब लगा सकते हैं नो आगम में।
शरीर लगाते
नो आगम द्रव्य में शरीर लगाते ज्ञायक शरीर, एक तो भावी और तद व्यतिरिक्त। और ज्ञायक शरीर में भी अभी वाला यानी वर्तमान वाला शरीर, भूत वाला और भविष्य वाला। वो भूत वाला शरीर कैसा त्यागा है? त्यक्त चवित च्युत च्युत चावित त्यक्त। हाँ, नो आगम भावी में जीव लेना जो भविष्य में जानेगा। और यहाँ जो भाव की बात है ना, भाव यानी वर्तमान पर्याय को डिनोट करता है, तो उसमें उसी में जिसका उपयोग है उसको आगम भाव कर्म कहा। उपयोग है ना, उसमें उपयोग उसी में है उसका। तो यहाँ आगम भाव कर्म का चल रही बात। कहते एदेसिम कम्माणम, कम्मा करना, कम्मणा हुआ है। एदेसिम कम्माणम केन कम्मेण पयदम, समोदान कम्मेण पयदम। इन कर्मों का किस कर्म से प्रयोजन है, इन कर्मों का नहीं, ये जो भाव कर्म की बात करते हैं उसका किस कर्म से प्रयोजन है, तो कहते हैं समवदान कर्म से प्रयोजन है। ये समवदान याद है, क्योंकि इसको सबको फिर दोबारा याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसके आगे का विषय ऐसा ही है, कौन से जीव में कौन कौन से कर्म लगते हैं ऐसा बताएंगे, फिर वो ओग से भी और मार्गणाओं में भी लगाएंगे। जैसे एक इंद्रियों में इसमें से कौन कौन से कर्म, अभी हमने 10 प्रकार देखे ना, उसमें से कौन कौन से उसमें एप्लीकेबल है। जैसे हम 20 प्ररूपना एक दूसरे पर घटाते थे, वैसे यहाँ कर्म घटाने हैं, इसलिए उस सबका अर्थ फिर दोबारा देखेंगे हम।
समवदान का क्या मतलब होगा
शब्द? हाँ वही समवदान निकालना, अभी 45 पृष्ठ। यानी वो एक साथ कितने कर्म बांधता है ना, उसकी बात है समवदान। यहाँ नीचे 20 नंबर का सूत्र है, अर्थ ही देखते डायरेक्ट। 7 प्रकार के, 8 प्रकार के और 6 प्रकार के कर्म का भेद रूप से ग्रहण होता है, ग्रहण होता है ना, वो बांधा जाता है, अतः वह सब समवदान कर्म है। देखो उसके नीचे जो यथाविधि विभाजित किया जाता है सेकंड लाइन, वह समवदान कहलाता है। उसके नीचे की लाइन कार्मण पुद्गलों का, यानी कर्मों का या कर्मण वर्गणा का, मिथ्यात्व असंयम योग और कषाय के निमित्त से 8 कर्म रूप, 7 कर्म रूप या 6 कर्म रूप भेद करना समवदानता है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। 8 प्रकार के, 7 प्रकार के और 6 प्रकार के कर्मों का समवदान रूप से अर्थात भेद रूप से ग्रहण होता है, अन्य प्रकार से नहीं। ये पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। इस प्रकार प्रतिपादन करने वाले सूत्रकार ने नौवा आदि कर्म नहीं है यह प्ररूपित कर दिया है। जो कार्मण वर्गणा स्कंध अकर्म रूप से स्थित है, वे मिथ्यात्व आदि कारणों का निमित्त पाकर अन्य परिणाम को न प्राप्त होकर अनंतर समय में ही 8 कर्म रूप से, 7 कर्म रूप से या 6 कर्म रूप से परिणत होकर गृहित होते हैं, ग्रहण किया जाता है उसका। यह यहाँ उक्त कथन का भावार्थ है। अभी ये समवदान भी कितने भेद से है, तो बंद की अपेक्षा उसमें भेद हो गए, उदय की अपेक्षा हो गए, और सत्ता के भेद से अनेक प्रकार का है, तो कर्म प्रावृत का यही तो विषय है, इसलिए भाव कर्म में यह समवदान कर्म की बात आ जाएगी। देखो ये हम 90 पृष्ठ पर आते हैं, अंतिम पैराग्राफ सूत्र का अर्थ। क्योंकि कर्म अनुयोग द्वार में समवदान कर्म का ही विस्तार से दी हुआ विस्तार से कथन किया है, अथवा संग्रह नहीं की अपेक्षा ऐसा कहा है। मूल ग्रंथ में तो प्रयोग चाहिए, ग लिखना उसमें, प्रयोग कर्म। देखो प्रयोग कर्म किसको कहा था याद है, योग को कहा था, मनोयोग, मनोयोग वचन योग का योग को प्रयोग, प्रयोग को या योग को, उसी को योग कर्म, प्रयोग कर्म कहा। समवदान कर्म अभी हमने पढ़ा। अधक कर्म किसको कहा याद है, औदारिक शरीर को अधक कर्म कहा था। निकालो अभी जरा रिवीजन कहेंगे पहले। ये प्रयोग समवदान अधक कर्म क्रियापति ये सब बातें आने वाली, तप कर्म और क्रिया कर्म। अभी समवदान कहाँ 45 पर देखा था ना हमने। हाँ ये अधिक कर्म जो है 46 पेज पर है, 46 पृष्ठ। देखो अधिक कर्म का अधिकार, हम वो नीचे वाला 22 नंबर का जो सूत्र है उसको पढ़कर उसका अर्थ भी देखेंगे। उपद्रावण, विद्रावण, परितापन और आरंभ रूप कार्य से निष्पन्न होता है वह सब अधक कर्म है। यानी जो इस रूप से कार्य रूप परिणमित होता है, कौन होता है? तो वहां औदारिक शरीर को सिद्ध किया है। अब उसको ध्यान में रखकर इसको पढ़ेंगे तो अर्थ लगेगा। देखो कृत शब्द कार्य सामान्य का वाची है, क्योंकि यह भाव गर्भ कर्मवाची कृत शब्द का ग्रहण किया है, अथवा कृत शब्द निमित्त रूप अर्थ में विद्यमान है। जीव का उपद्रव करना उद्दावण कहलाता है, उसको तकलीफ देना। हम कहते हैं ये उपद्रवी प्राणी है, ये चूहा क्या है करता है, अपने को उपद्रव करता है। हा? हम कहते हैं ये उपद्रवी प्राणी है, ऐसा कहते हैं वो मराठी में। दूसरे को तकलीफ देना। अंग छेदन आदि व्यापार करना विद्रावण कहता है, विद्रावण। संताप उत्पन्न करना परिदावण कहलाता है, और प्राणियों के प्राणों का वियोग करना आरंभ कहलाता है। उपद्रावण, विद्रावण, परितापन और आरंभ आदि कार्य रूप से जो उत्पन्न हुआ औदारिक शरीर है, यह सब अधक कर्म है। यानी औदारिक शरीर को अधक कर्म कहा। जिस शरीर में स्थित जीवों के उपद्रावण, विद्रावण, परितापन और आरंभ अन्य के निमित्त से होते हैं वह शरीर अधक कर्म है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। यानी अन्य जीव उसको उपद्रव करते हैं, पीड़ा देते हैं, संताप करते हैं, मारते हैं, ये अर्थ लेना औदारिक शरीर वाले। नहीं है अनार्की में, क्योंकि उसको एक औदारिक शरीर नहीं है। देखो ये यहाँ शंका पड़ेंगे तो कि शंकाकार ने पूछा तो ऐसा कहेंगे तो भोगभूमि में तो कोई मारना काटना ही है तो उनके अधक कर्म नहीं होगा, तो कहते औदारिक जाति है ना शरीर की, इसलिए उनके भी वो अधक कर्म कह दिया। देखो यहाँ 47 पृष्ठ पर शंकाकार ने पूछा था, इस तरह से स्वीकार करने पर भोगभूमि के मनुष्य और तिरियंचों का शरीर अधक कर्म नहीं हो सकेगा, क्योंकि वहां उपद्रवण आदि कार्य नहीं पाए जाते। समाधान किया था, नहीं, क्योंकि औदारिक शरीर रूप जाति की अपेक्षा यह बाधा सहित शरीर, बाधा सहित है इसलिए इसको अधक कर्म कहा, और भोगभूमिजों का शरीर एक है। ये बाधा सहित शरीर और भोगभूमिजों का शरीर किस अपेक्षा एक है? औदारिक जाति की अपेक्षा, इसलिए उसको भी अधक कर्म कहने में आता है, अतः उसमें अधक कर्म पड़ने की सिद्धि हो जाती है। तभी शंकाकार ने पूछा था, नारकियों के शरीर में भी उपद्रवण आदि कार्य देखे जाते हैं, वहां तो बहुत मारकाट चलती है, इसलिए उसे अधक कर्म क्यों नहीं कहते हैं? उसका समाधान, नहीं, क्योंकि वहां पर उपद्रावण, विद्रावण और परिताप से आरंभ नहीं पाया जाता। यानी उस जीव की प्राण और प्राणी का वियोग जो नहीं होता, शरीर से उसके प्राण जुदे नहीं हो सकते, वो मर नहीं सकता। जिस शरीर में स्थित किन्हीं जीवों के किसी भी काल में उपद्रावण, विद्रावण और परितापन से मरना संभव है। ये पहले तीन तो जो है वो उसके निमित्त बताए, उसके कारण वो मर सकता है, वह शरीर अधक कर्म है। परंतु यह विशेषण नारकियों के शरीर में नहीं पाया जाता, क्योंकि इनसे उनकी अपमृत्यु नहीं होती। कितनी भी तकलीफ क्यों नहीं, वो तो घानी में पेलते हैं, क्या क्या करते हैं, तेल में उबालते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते, फिर भी वहां मरण नहीं होता। अथवा चूंकि उपद्रावण आदि चारों का समुदाय रूप एक विशेषण है, इसलिए पूर्वोक्त दोष नहीं आता। हाँ वही तो
मैं भी शंका उठाता हूँ।
हाँ हाँ उठाइए जरूर।
चरम शरीर को तो अपमृत्यु नहीं हो सकती
है। हाँ अपमृत्यु, हाँ फिर भी अभी फिर भी वो ऊपर बता दिया भोगभूमि वालों के, उसमें जाति एक है, जाति एक है, औदारिक जाति एक है, इसलिए उसको कहेंगे हम,
कहेंगे,
हाँ कहेंगे। कौन सा?
नहीं नहीं भोगभूमि के शरीर को इसलिए लिया था, इसका औदारिक शरीर है।
ये देखो औदारिक शरीर रूप जाति की अपेक्षा यह बाधा सहित शरीर और भोग, यह है ने अन्य जीवों का बाधा सहित वाला है, और भोग भूमि जीवों का शरीर वो तो बाधा रहित है, क्योंकि वो भी वज्रषभ नारा सहनन वाले होते हैं और उन वहाँ भी अपमृत्यु नहीं होती है, है ना, जिसको वो कदली घात वहाँ पॉसिबल नहीं होता, अनपवर्त्य आयु कहते ना उसको। ये हो गई अधक कर्म की बात, अब आगे वाले भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी वही सब विषय चलने वाला है। ईर्ष्यापथ कर्म, याद है ईर्ष्यापथ कर्म किसको कहा था, याद है? हाँ, ईर्ष्यापथ जिसको हम ईर्ष्यापथ आश्रव कहते हैं, हाँ वही है, देखो 47 पृष्ठ पर अंत में 23 नंबर का सूत्र, ईर्ष्यापथ कर्म का अधिकार है, उसका अर्थ, ईर्ष्या का अर्थ योग है, वह जिस कारमान शरीर का पथ मार्ग हेतु है, हेतु यानी कारण है, निमित्त है, यानी अकेला योग ही जहाँ कर्म के आचरण का हेतु है, योग मात्र के कारण जो कर्म बनता है वह ईर्ष्यापथ कर्म है, वो कर्म की बात है। वो किसको होता है तो छद्मस्थ वितरागों के, यानी 11वें 12वें और सहयोगी केवलियों के होता है, क्योंकि अयोगी तो योग रहित है तो उनके कुछ ईर्ष्यापथ कर्म भी नहीं है। अब उसके आगे बहुत चर्चा की थी, अब हम दूसरे देखते हैं, ये 47 हो गए ना। तप कर्म देखना है हमको, तप कर्म नंबर 54 निकालना पेज। देखो तप करने, ये अन्य अन्य प्रकार के जो तप है बाह्य और अभ्यंतर, उसको तप कर्म कहा था, 54 पर 25 नंबर का सूत्र, उसमें तो तप कर्म का अधिकार इतना ही लिखा है। 26 में लिखा है अभ्यंतर और बाह्य भेद से 12 प्रकार का है, वह सब तप कर्म है, उस सबको तप कर्म कहा है। तो उसमें हमने देखे थे अनशन है, अवमौदर्य है, वृत्ति परिसंख्यान, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, और कौन सा रह गया, रस परित्याग, ये तो हुए बहिरंग, और अंतरंग में हाँ वो तो हो गया, हाँ प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, हाँ फिर वो प्रायश्चित के भेद में बताए थे, हाँ प्रायश्चित के थे, तो वैयावृत्य, हाँ स्वाध्याय, ध्यान, अव्युत्सर्ग, अव्युत्सर्ग, ये सारे तप कर्म कहलाते हैं। तो उन्होंने ध्यान की बहुत सारी विस्तार से चर्चा की थी वहां पर, है ना। अभी हम आगे वाला देखते हैं, ये सब ध्यान की चर्चा बहुत चली थी, अभी प्रयोग कर्म को भी, ये क्रिया कर्म देखना है, देखो क्रिया कर्म 88 पृष्ठ, देखो कल हमने देखा था 88 पृष्ठ पर 28 नंबर का सूत्र, आत्माधीन होना, प्रदक्षिणा करना, 3 बार करना, 3 बार अवनति, 4 बार सिर नवाना और 12 आवर्त, ये सब क्रिया कर्म है। ये तो मुनियों के हो गए वो सारे क्रिया कर्म। अब प्रयोग कर्मों को भी देख लेते हैं, वो उसके पहले होगा ना, 45 के भी आगे पहले, समाधान के पहले था ना वो मन वचन काय योग की वो, हाँ ये देखो ये प्रयोग कर्म है, 45 पर ही है, नहीं उसके पहले 44 पृष्ठ पर है, 44 की 16 नंबर का सूत्र, देखो वह 3 प्रकार का है प्रयोग कर्म, 3 प्रकार का है, मन प्रयोग कर्म, वचन प्रयोग कर्म और काय प्रयोग कर्म। जीव का मन के साथ प्रयोग, वचन के साथ प्रयोग और काय के साथ प्रयोग, इस प्रकार प्रयोग 3 प्रकार का है, उसमें भी वह क्रम से ही होता है, अक्रम से नहीं, एट अ टाइम तीनों नहीं हो सकते, एक के बाद एक हो सकते। योगों प्रयोग है ना, योग योगों का पलटना होता रहता है। देखो उसमें तीसरी लाइन, सत्य असत्य उभय और अनुभय मन प्रयोग के भेद से। मन प्रयोग चार प्रकार का है, सत्य असत्य उभय अनुभय भेद से वचन प्रयोग भी चार प्रकार का है, काय प्रयोग औदारिक आदि काय प्रयोग के भेद से सात प्रकार का है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा क्रम नहीं है, ऐसा क्रम नहीं, उलट पुलट कुछ भी हो सकता है बीच में। हाँ नहीं, जो जिसके मन है भी, तो शुरू में तो पहले काय योग होगा, फिर वो बदलता रहता है ना। एक योग में ज्यादा रहेगा भी नहीं, अंतर्मूल से ज्यादा, और उसका पलटना होता रहता है। अकेले जो एकेंद्रीय है उनके तो काय योग ही रहेगा, उनके लिए तो कुछ दूसरा योग ही नहीं है, तो फिर उसमें रहेंगे वे। संयोगी में भी वो तीन योग सिद्ध किए थे। देखो यहाँ इसका विशेषार्थ में समाधान किया है 45 पृष्ठ पर, बीच में जो विशेषार्थ लिखा है ना समवदान के ऊपर, वहां पढ़ते, संसारी जीवों के और संयोगी केवलियों के मन वचन और काय के आलंबन से प्रति समय आत्म प्रदेश परिस्पंद होता रहता है। आगम में इस प्रकार के प्रदेश परिस्पंद को योग कहा जाता है। प्रकृत में इसे ही प्रयोग कर्म शब्द द्वारा संबोधित किया है। जिसको मन वचन का योग कहते हैं उसी को प्रयोग कर्म कहा है। परंतु किंतु वीरसेन स्वामी के अभिप्राय अनुसार इतनी विशेषता है कि यहाँ जिन जीवों के यह योग होता है वे प्रयोग कर्म शब्द द्वारा ग्रहण किए, उन जीवों को प्रयोग कर्म कहा है। हम तो योग अलग बताते हैं ना, ये मन वचन का योग है, परंतु यहाँ जिसको योग है उस जीव को यहाँ प्रयोग कर्म कहने में आ रहे हैं। हाँ हाँ, उसी को प्रयोग कहा। ये यहाँ जो है वो वीरसेन स्वामी ने जो कुछ लिखा उसके लिए वहाँ यहाँ शब्द यूज किया। देखो नीचे है ना, जिन जीवों के यह योग होता है वे प्रयोग कर्म शब्द द्वारा ग्रहण किए गए, ये जिन के पहले यहां लिखा है। अब हम मूल पृष्ठ पर आते हैं। अभी सभी ले ली ना हमने, प्रयोग समुदान अधकर्म इरियापद तप कर्म क्रिया कर्म वगैरह वगैरह, और भी कोई नया आया तो हम देख लेंगे बाद में। यानी भाव कर्म में जो उस प्रावृत में इसी की तो बात है सब। यहाँ इन छह कर्मों को आधार मानकर 91 पेज, कौन कौन से छह कर्म हुए, प्रयोग कर्म, समवदान कर्म, अधक कर्म, इरियापद कर्म, तपक कर्म और क्रिया कर्म, इनको आधार मानकर यानी अपनी क्राइटेरिया क्या, ये कर्म सत द्रव्य क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव और अल्प बहुत्व, इन अनुयोग द्वारों का कथन करते हैं। यानी उस पर अभी ये लगाएंगे, सत प्ररूपणा की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, निर्देश यानी कथन, ओग निर्देश और आदेश निर्देश। ये पहले भाग से हम देखते आए ना इसको, ओग यानी सामान्य और आदेश यानी विशेष कथन। ओग यानी वो गुणस्थान की बात भी वो योग में आती है, और उसी में वो मार्गणाओं की बात, गति में जो कोई विशेषता इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा जो विशेषता है वो आदेश में आ जाएगी। ओग की अपेक्षा प्रयोग कर्म, समवदान कर्म, अधक कर्म, इरियापथ कर्म, तपक कर्म और क्रिया कर्म है। सत है ना, बस वो है, बता दिया उन्होंने।
दस में तो छह क्यों लेते हैं, नाम स्थापना द्रव्य भाव को छोड़ा है ना,
किस में
अपने पहले दस कर्म है
उसमें भाव लिया ना, अंत में लिया
वर्णन करी ने,
भाव का अंत में लिया, भाव कर्म वो प्रावृत वाला भाव वो ही लिया।
यहाँ इन छह कर्मों का आधार,
हाँ इन छह कर्मों को आधार मानकर
संबदान
ये
हाँ
दस में से ही
छह,
उन दस में से ही छह को ही लिया और उसमें वो अलग अलग जीवों पर लगाएंगे। विशिष्ट गुणस्थान में इसमें से कितने कर्म हो गए, हाँ जैसे मनुष्य में इसमें से कितने कर्म हो गए, तिरियंचों में कौन से कर्म हो गए, इसमें से देवों में क्या वो तप कर्म हो सकता है क्या नहीं हो सकता, हो सकता है कि नहीं हो सकता, देव में नहीं हो सकता, यही बात अभी लगाएंगे अभी, हाँ मनुष्य में होगा। अब देखो हम देखेंगे आगे, आदेश की अपेक्षा, ये तो सामान्य से क्या हुआ, सत है ना, सत प्ररूपणा में तो वो है कि नहीं उतना ही बताते, तो ओगे ने सामान्य में क्या बता दिया कि ये छह कर्म है, कौन कौन से, प्रयोग, समवदान, अधक कर्म, इरियापद कर्म, तपक कर्म और क्रिया कर्म, और आदेश की अपेक्षा बताएंगे। हाँ हाँ, वो तो उसका निक्षेप है ना, वो नाम कर्म का नाम, वो नाम कर्म हुआ, स्थापना है ना, इसमें मैंने ये कर्म ऐसा कह दिया, ये स्थापना हुआ, द्रव्य उसमें निक्षेप में लगाते हैं ना, वो तो द्रव्य नहीं, उसके भूत भविष्य पर्याय वगैरह उस पे, उसमें कोई उसका डिफरेंस नहीं है वो, और भाव तो वर्तमान में, भाव में तो ये सब समाहित ही होते हैं, भाव में तो ये सभी आते हैं। हाँ, अब इन छह को आधार मानकर अभी उस पर ये चर्चा चलेगी। आदेश की अपेक्षा, आदेश की अपेक्षा ने अभी मार्गणाओं पर लगाएंगे, गति मार्गणा में इनमें से कौन कौन से हो सकते हैं, ये हर मार्गणा पर अलग बताएंगे। तो अभी गति मार्गणा के अनुवाद से, उसमें मार्गणा तो गति मार्गणा कही, अभी उसमें भी चार गतियां हैं, तो हर एक गति पर अलग घटाएंगे। नरक गति में, नारकियों में क्या क्या हो सकता है, प्रयोग कर्म होगा क्योंकि मनोवचन काय के वहां योग है, समवदान कर्म, वहां कितने का वो ग्रहण चल रहा है, आठ का या सात का, क्योंकि आयु का जब बंद होगा तब आठ का ग्रहण और अन्यथा सात का। क्रिया कर्म होते हैं, देखो क्रिया कर्म है ने वो केवल मुनियों को ही नहीं लिया है, तो सम्यक दृष्टि वहां होते हैं तो वो क्रिया कर्म में ले लिया उनको, नारकी सम्यक दृष्टि होते है, आत्माधीनता, हाँ आत्माधीन होकर, आत्माधीन होकर। अब आगे तो वहां इरियापद कर्म होगा कि नहीं होगा, प्रतिवाद है नहीं, क्योंकि वो तो ग्यारहवें बारहवें गुणस्थान वाले को होता है, तपक कर्म वो भी मुनियों के होता है, वो भी नहीं होगा क्योंकि नारकियों के अवतारिक शरीर का उदय और पांच महाव्रत नहीं होते। हमने पहले देखा अधक कर्म भी इनको नहीं होता है क्योंकि अवतारिक शरीर को वो होता है। इसी प्रकार सातों पृथ्वियों में जानना चाहिए, सभी नारकियों के लिए यही सेम रूल है, सब प्रकार के देव, सब प्रकार के देवों में भी ये यही सिद्धांत होगा। वैक्रियक शरीर कायोगी, वैक्रियक मिश्र कायोगी मार्गणाओं में, यानी वो योग मार्गणा भी, ये योग मार्गणा भी यहाँ बताए कायोग वाले, यानी वैक्रियक शरीर कायोग वालों में भी इतने ही हो गए, प्रयोग कर्म, समाधान कर्म और क्रिया कर्म। वैक्रियक मिश्र कायोगी मार्गणाओं में नारकियों के समान भंग है। अब आगे तिरियंच गति में लगाएंगे, गति मार्गणा में ही तिरियंच गति में, तिरियंचों में प्रयोग कर्म, समवदान कर्म, अधक कर्म और क्रिया कर्म होते हैं। अधक कर्म क्यों लिया, जो ऊपर नारकी में नहीं लिया था, अभी औदारिक शरीर है इसलिए। इरियापद कर्म और तपक कर्म नहीं होते क्योंकि तिरियंचों के महाव्रत नहीं होते हैं। इसी प्रकार अभी वो तिरियंचों में भी उसके भेद करेंगे, पंचेंद्रिय तिरियंच, पंचेंद्रिय तिरियंच पर्याप्त, पंचेंद्रिय तिरियंच योनिनी और पंचेंद्रिय तिरियंच अपर्याप्तकों के भी कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि पंचेंद्रिय तिरियंच अपर्याप्तकों के क्रियाकर्म नहीं होता क्योंकि उनमें सम्यक दृष्टि जीव नहीं होते। क्रियाकर्म सम्यक दृष्टि को ही कहा, जब पंचेंद्रिय तीरियन अपर्याप्तकों में समय दृष्टि नहीं होते ऐसा कहा, तो कौन से अपर्याप्त समझना? या क्या कहा है, पंचेंद्रिय तीरियन अपर्याप्तों में समय दृष्टि नहीं होते, तो कौन सा अपर्याप्त समझना? या कौन सा अपर्याप्त? लब्धि अपर्याप्त की निवृत्ति? क्यों निवृत्ति अपर्याप्त में समय दृष्टि नहीं है? लब्धि में नहीं है, इसीलिए उसी को लेना पड़ेगा। समय दृष्टि नहीं है की बात की ना।
अच्छा अच्छा, तो नहीं लेना है।
अब ऐसे ही ये सेम जो है, हमने कितने कितने देखे, प्रयोग, समवदान, अधकर्म और क्रियाकर्म, किसमें किसमें ये चार किसमें होते हैं वो बताएंगे। हाँ, कहीं भी हो तो तिर्यंच में अपर्याप्त अवस्था में निवृत्ति में समय दृष्टि है कि नहीं है? तो है। तो यहाँ समय दृष्टि नहीं होते जो लिखा है वो लब्धि अपर्याप्त की अपेक्षा ये भंग कहा है, क्योंकि तिर्यंचों के भंग जब हम कहते हैं तब कौन कौन से कहते हैं? पंचेंद्रिय तिर्यंच, तिर्यंच योनिमति, और वो पंचेंद्रिय अपर्याप्त ने अलब्धि अपर्याप्तों की बात होती है वहां पर, बराबर है ना? पंचेंद्रिय तिर्यंचों के भेद हमने किए तो उसमें तो पंचेंद्रिय तिर्यंच, योनिमति और लब्धि अपर्याप्त, ऐसे तीन भेद होते हैं, और उनमें तो कोई समय दृष्टि होने का सवाल नहीं है, इसलिए वहां क्रियाकर्म नहीं होगा। अब अभी जो हमने लब्धि अपर्याप्त का भंग देखा कि क्रियाकर्म के को छोड़कर बाकी कौन से, प्रयोग, समवदान और अधकर्म, तो ये तीन ही किसमें पाए जाएंगे वो अभी कह रहे हैं। ये सभी मार्गणा उसके समान है ना, वो वहीं पर बता देंगे। तो कहते हैं मनुष्य अपर्याप्त, अभी ये कौन सा अपर्याप्त समझना है? यहाँ भी लब्धि अपर्याप्त ही समझना पड़ेगा। पंचेंद्रिय अपर्याप्त, त्रस अपर्याप्त, सब एकेंद्रिय, सब विकलेंद्रिय, अभी स्थावर काय, यानी काय मार्गणा की अपेक्षा पांचों स्थावर काय, मति अज्ञानी, श्रुत अज्ञानी, विभंग ज्ञानी, मिथ्या दृष्टि और असंगियों के पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तों के समान भंग है। यानी क्योंकि उनमें भी वही क्राइटेरिया है ना सब में, क्रियाकर्म क्यों नहीं, क्योंकि इतनी इतनी अवस्थाओं में समय दृष्टि जीव नहीं है, इसलिए यानी ये जो अपर्याप्तों की बात थी वो लब्धि अपर्याप्त की ही थी। अर्थात इनके प्रयोग कर्म, समवदान कर्म और अधक कर्म होते हैं, शेष कर्म नहीं होते। अब मनुष्य गति पर लगाएंगे। मनुष्य गति में, मनुष्यों में, अब मनुष्यों में कौन कौन से डिविजन्स होते हैं? तो एक तो सामान्य में, तब सबको ले लेंगे, फिर मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियों में ओघ के समान कर्म होते हैं। अब ओघ के समान यानी कौन कौन से? छह मनुष्यनियों में जो लगाए इरियापत होगा कि नहीं होगा? ये स्त्रीवेद वाला भाव, स्त्रीवेद वाला जो लेना उसमें, इसलिए मनुष्य नहीं कहा, उसमें भी घटित होगा। छहो लिए ना, छहो होते कह दिया उन्होंने, इन्हें भाव स्त्री वेद वाला। इसी प्रकार पंचेंद्रिय, जब हम अकेले क्राइटेरिया इतना ही कहेंगे, पंचेंद्रियों में कौन कौन से होते हैं कर्म, तो छह होते हैं। ये जो मार्गणाएं बता रहे हैं, इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा पंचेंद्रिय जीवों में कौन से कर्म हो गए, तो सभी हो गए। हाँ, क्योंकि वहां हम डिफ्रेंशिएट नहीं करते कि ये नारकीय के, तिर्यंच के, देव के, मनुष्य है। पंचेंद्रिय पर्याप्तों में वो सभी हो गए, त्रस में भी सभी हो गए, त्रस पर्याप्तों में भी सभी हो गए, पांच मनोयोगी, पांच वचन योगी, ये इन सब में सभी होते, इसलिए सबकी लिस्ट दे दिए। काय योगी है, औदारिक काय योगी है, औदारिक मिश्र काय योगी, औदारिक मिश्र काय योगी में इरियापथ होगा कि नहीं होगा? देखो समुद्घात में औदारिक मिश्र होता है, कौन से समुद्घात में होता है? चार है ना, कपाट में होता है। आप क्या कहते? प्रतर लोक पुराण में कारमण होता है, औदारिक मिश्र की बात है ना, तो औदारिक मिश्र भी लिया हुआ। कारमण का योगी, अब कारमण का योगी में भी इरियापथ और ये सब लगाया, वो कैसे हो सकता है? वही वही प्रतर और लोक पुराण में। हाँ, और तप कर्म भी बताए, वो भी वहां की अपेक्षा, क्योंकि ध्यान वाला तप है ना वहां पर। अकेले वो मुनियों का तप, वो 12 प्रकार का उतना ही नहीं लेना उसमें, क्योंकि ध्यान नाम का तप तो हमने 14वें तक घटित किया था, इसलिए उसको भी ले सकते। आभि निबोधिक ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, ये सब सम्यक दृष्टि है ना। वो कुमति कुश्रुत को पहले ले लिया था उन्होंने, उसको अलग से बताया था। मन परे ज्ञानी, संयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, अवधि दर्शनी, शुक्ल लेशा वाले, अन्य लेशाओं को नहीं लिया, क्योंकि अन्य लेशाओं में वो इरियापद घटित नहीं होगा। भव्य सिद्धिक, सम्यक दृष्टि, हाँ अभव्य को नहीं, क्योंकि अभव्य में तो अलग घटित होगा, उसमें कौन कौन से क्रियाकर्म होते हैं वो बाद में हम देखेंगे। क्षायिक सम्यक दृष्टि, ये कौन कौन से कर्म होते हैं। उपशम सम्यक दृष्टि, उपशम सम्यक दृष्टि को भी वो इरियापथ होगा कि नहीं होगा? हाँ, द्वितीय उपशम है ना वहां पर। हाँ, संगी और आहारक जीवों के कथन करना चाहिए, क्योंकि उनमें और उनसे इनमें कोई भेद नहीं है। यानी जो मनुष्य गति का जो हमने देखे थे, छह हो सकते हैं, तो अभी जो हमने लिस्ट पढ़ी थी इनमें भी सब में छह छह हो सकते हैं। सामान्य क्षायिक समय दृष्टि, हाँ, वेदक में वो ऊपर वाले इरियापथ वाला नहीं होगा। हाँ, अब आगे आहारक कायोग और आहारक मिश्र कायोगियों के अधिक समान कर्म होते हैं। ये अधिक शब्द क्यों लाया लाला? किंतु इतनी विशेषता है कि
क्रियाकर्म नहीं होता।
हाँ,
वो छठे
गुणस्थान नहीं, नहीं वो क्रियाकर्म तो होगा ना, परंतु इरियापत नहीं होगा, उनके इरियापत कर्म नहीं होता। क्योंकि वहां पर क्षीण कषाय और उपशांत कषाय अवस्थाओं का अभाव है। इरियापत तो 11वें 12वें में होगा, और ये आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग छठे में है। इसी प्रकार तीन वेद, चार कषाय, तीन वेद वालों को जहां तक सवेद भाग है वहां तक वो इरियापत वाला नहीं होगा। ख्याल आता है ना, चार कषाय उसमें भी वो इरियापत वाला नहीं होगा। सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, उसमें होगा कि नहीं होगा? वो सामायिक छेदोपस्थापना कौन से गुणस्थान तक है? छठे से नौवे तक है। हाँ, और परिहार विशुद्धि कहाँ से? कहाँ से? छठे सातवे। हाँ, पीत पद्म लेशा वाले वो कहाँ तक है? सातवे तक है, उसके आगे नहीं जा सकते, इसलिए उनको वो इरियापथ कर्म नहीं होगा। वेदक सम्यक दृष्टि वो भी सातवें तक ही हो सकते हैं, इनके भी यही कहना चाहिए कि उनके इरियापथ कर्म नहीं होता, क्योंकि उनसे इनमें कोई विशेषता नहीं है। विशेषता चाहिए, विशेषतः हो गए हैं, विशेषतः का अर्थ होता है विशेष रीति से। अब सूक्ष्म सांप्राय संयत और यथाख्यात विहार शुद्धि संयत जीवों के ओग के समान कर्म होते हैं। ओग यानी वो छह कर्म होते हैं, विशेषता फिर बताएंगे। इतनी विशेषता है कि इनके क्रिया कर्म नहीं होता, क्योंकि इनका मन ध्यान में लगा रहता है, इसलिए वहां क्रिया कर्म का होना असंभव है। क्या कहते हैं? सूक्ष्म सांप्राय संयत और यथाख्यात विहार शुद्धि संयत, यानी बाकी तो होते हैं परंतु क्रियाकर्म नहीं होता। आत्मादीन होना तो सब में है, वो आत्मादीन यानी वो भगवान के नमस्कार आदि जो क्रियाएं हैं वो उसमें लेना। वो चार बार नमन करता क्या उसकी बात नहीं, देव शास्त्र गुरु के प्रति वहां जो नमस्कार आदि जो भाव है अपर्याप्त में लेना कि नहीं लेना, उपचार से ले सकते हैं ना उसमें, अब देखेंगे आगे कहीं लगाया होगा तो। साथ ही इतनी विशेषता है कि सूक्ष्म सांप्रायिक संयत जीवों के इर्यापत कर्म भी नहीं होता, क्योंकि कषाय सहित जीवों का इर्यापत कर्म नहीं हो सकता। अब अपगत वेदी अकषायी ये अलग अलग मार्गणाएं बतलाए ना, वेद मार्गणा की अपेक्षा अपगत वेदी, कषाय मार्गणा की अपेक्षा जो अकषायी है, ज्ञान मार्गणा में केवल ज्ञानी और दर्शन मार्गणा में केवल दर्शनी जीवों के यथाख्यात विहार शुद्धि संयत जीवों के समान कर्म होते हैं। यानी कौन कौन से हो गए अभी हम, पहले प्रयोग कर्म होगा कि नहीं, हमने छह कर्म देखा था ना, प्रयोग है ना वहां पर, हाँ समवदान भी है, फिर अधक कर्म भी है क्योंकि औदारिक शरीर है, हाँ क्रिया कर्म भी, क्रिया कर्म अपगत वेदी में होगा क्या नहीं होगा, नवे में
वो भी ध्यान चल रहा
है, ध्यान ही चल रहा है वहां पर, क्रिया कर्म छोड़ क्योंकि हमने देखा ना यथाख्यात के समान है, तो यथाख्यात में उन्होंने क्रिया कर्म नहीं है बताया, तो इन जीवों में भी क्रिया कर्म नहीं होगा। तो क्रिया कर्म के अलावा अन्य होगे वहां पर, इरियापत अपगत वेदी नवे वाले को नहीं होगा, हाँ बाकी को ऊपर के होगा कर्म होते हैं। अब संयता संयत जीव, संयता संयत जीवों के प्रयोग कर्म, समवदान कर्म, अधक कर्म और क्रिया कर्म होते हैं। देखो उसमें संयता संयत में तप कर्म नहीं लिया है क्योंकि वो मुनियों के बाद तप जो है मुनियों से छठे से लेकर आगे बताया। इसी प्रकार असंयत कृष्ण लेशा वाले, नील लेशा वाले और कपोत लेशा वाले जीवों के भी कहना चाहिए, कौन से कि उनको ये चार कर्म होते हैं क्योंकि उसमें भी सम्यक दृष्टि तो पाए जाएगी ना, इसलिए वो क्रिया कर्म भी रखा वहां पर। तथा इसी प्रकार अभव्य सिद्धिक सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्यादृष्टि जीवों की भी कहना चाहिए ही करना उसको। अभी उसमें क्रिया कर्म को छोड़ना पड़ेगा, किस किस को लिया, अभव्य सिद्धिक सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्यादृष्टि। तो उसमें क्रिया कर्म के अलावा और कौन कौन से हो गए, प्रयोग कर्म होगा, समवदान होगा और अधक कर्म होगा। देखो इतनी विशेषता है कि इनके क्रियाकर्म नहीं होता, अनाहारक जीवों के ओघ के समान कर्म होते हैं। इस प्रकार सत प्ररूपणा समाप्त हुई। अनाहारक जीवों में लगाएंगे अभी हम, तो अनाहारक जीवों में ये इर्यापथ कर्म होगा कि नहीं होगा, चौदवा गुणस्थ, चौदवे गुणस्थान अनाहारक है, अयोगी एरिया पता नहीं है, तो अनाहारक में कब लेना, हाँ अनाहारक में इरियापद कब, प्रतर लोक पूरण और प्रतर जो है वो केवली समुदाय में इरियापद होगा। फिर समवदान,
तीन समय लेना मतलब प्रतर लोक पूरण,
हाँ तीन समय के लिए अनाहारक है, अनाहारक की बात हुई, अनाहारक में छह उन्होंने लगाए ना, प्रयोग यानी वहाँ योग है कि नहीं है अनाहारक जीवों में, अन्य भी जो विग्रह गति वाले वहाँ भी योग चल रहा है, कारमान का योग चल रहा है, तो योग है वहाँ पर। समवदान कर्म,
समवदान कर्म
अनाहारक अन्य भी है ना, अकेला वो केवली मत समझना विग्रह गति में जो है अनाहारक जीव होते हैं, वो मिथ्यादृष्टि भी हो गए, समवदान तो चल रहा है। अधक कर्म, अनाहारक में अधक कर्म, औदारिक शरीर वालों को ही लेना है। पर जब अनाहारिक अनाहारक जो है
वो विग्रह गति में ही है।
विग्रह गति में शरीर कहाँ है?
नहीं, वो तो क्या?
केवली को इसमें तो नहीं ले सकते ना, के ले सकते हैं औदारिक शरीर। यहाँ तो छो घटित किया इरियापद कर्म अभी बस औदारिक शरीर है। हाँ, तेरवे में भी है ना वो अनारक। तपक कर्म, तप कर्म तो है, ध्यान है सब जगह, और क्रिया कर्म भी कर्म हुआ है, पहले हमने देखा नहीं था 91 पेज पर। अभी हमने छह कर्मों के नाम देखे ना, वो ऊपर से चौथी लाइन में तपक कर्म और क्रिया कर्म कर्म हुआ है वो। देखो अभी हम यहाँ आते हैं 92 पेज पर अंतिम लाइन, इस प्रकार सत प्ररूपणा समाप्त हुई। ये छह कर्मों पर सत वगैरह सभी बताना है ना हमको। अभी सत के बाद क्या है होता है? द्रव्य। द्रव्य में क्या आता है? हमेशा संख्या आती है। तो द्रव्य प्रमाणानुगम का कथन करते समय सर्वप्रथम द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता के अर्थ का कथन करते हैं। द्रव्य प्रमाणानुगम में द्रव्यार्थता बताएंगे और प्रदेशार्थता कहेंगे। यथा प्रयोग कर्म, तपक कर्म और क्रिया कर्म में जीवों की द्रव्यार्थता संज्ञा है। जब हम प्रयोग कर्म की बात करेंगे, तप कर्म की और क्रिया कर्म की, वहां जीवों की द्रव्य यानी जीवों की संख्या को द्रव्यार्थता कहेंगे। और जीव प्रदेशों की प्रदेशार्थता संज्ञा है। तो जो प्रयोग कर्म करने वाले ने योग वाले जो जीव है उनकी संख्या को हम वहां द्रव्य कहेंगे। और एक एक जीव के कितने प्रदेश होते हैं? लोक प्रमाण संख्या है ना, तो उसको हम उसके प्रदेशार्थता कहेंगे। यानी जीव और उसके प्रदेश कौन कौन से कर्मों में, ये ख्याल रखना, क्योंकि यही बात आगे बहुत बार चलेगी। प्रयोग कर्म, तप कर्म और क्रिया कर्म, ये तीन कर्मों में जीवों को द्रव्यार्थता कहा है और जीवों के प्रदेशों को प्रदेशार्थता कहा है। अब अन्य की बात चलेगी। समवदान कर्म और यिरियापद कर्म में, यानी वहां क्या बात होती है? कर्मों के ग्रहण की बात है ना, वहां जीवों की द्रव्यार्थता संज्ञा है और उन्हीं जीवों में स्थित वहां कर्म परमाणुओं को लेंगे भी। उन्हीं जीवों में स्थित अभवियों से अनंत गुणे और सिद्धों से अनंत गुणे हीन कर्म परमाणुओं की प्रदेशार्थता संज्ञा है। देखो पहले तीन कौन से देखे? प्रयोग कर्म, तप कर्म और क्रिया कर्म। जीवों को द्रव्यार्थता कहा और जीव के प्रदेशों को प्रदेशार्थता कहा। समवदान कर्म और इरियापद कर्म में जीवों को द्रव्यार्थता कहा और जीवों में स्थित कर्म परमाणुओं को प्रदेशार्थता कहा। क्योंकि हम कर्मों के प्रदेश कर्म परमाणु, एक परमाणु को एक प्रदेश कहते हैं। हाँ, अब आगे अधक कर्म। हाँ, देखो यहां दो शब्द आते हैं, द्रव्य और प्रदेश। प्रयोग कर्म यानी जहाँ योग की बात है, योग वाला जीव, तप करने वाले जीव और क्रिया कर्म करने वाले जीव, वहां जब द्रव्य क्या है तो हम जीवों की संख्या कहेंगे। वहां पर जीवों को ही द्रव्य कहा और जीव के प्रदेशों को प्रदेश कहा है। अब आगे समवदान कर्म और इरियापद कर्म में जीवों को ही वहां द्रव्य कहा है। अब जीवों के प्रदेश को प्रदेश नहीं कहा है, उसमें जो कर्मों के परमाणुओं की संख्या है उसको प्रदेश कहा है। ये पांच होगी ना, अब अधक कर्म की बात है। अधक कर्म में अभी यहां द्रव्य किसको कहा कहना, क्योंकि अधक कर्म हमने औदारिक शरीर को कहा था, जीव को नहीं कहा था, ऊपर तो जीव को कहा था। तो अधक कर्म में अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों से अनंत गुणे हीन औदारिक शरीर के नौ कर्म स्कंधों की द्रव्यार्थता संज्ञा है। ये औदारिक व औदारिक करना उसका। अपनी भाषा में औदारिक शरीर के जो स्कंध है उसको यहाँ द्रव्य कहा। अधक कर्म में वो कितने होते हैं उसके लिए उसका प्रमाण बताया, अभव्यों से अनंत गुणा। तो ऐसे बहुत सारे अनंत है जो अभव्यों से अनंत गुणा है, परंतु वो सिद्धों से अनंत वे भाग होने चाहिए। अब इसको प्रदेश कहा किसको कहना, द्रव्य किसको कहा, औदारिक शरीर के स्कंधों को। और उन्हीं औदारिक शरीर नौ कर्म स्कंधों में स्थित, ये बीच वाला प्रमाण निकाल दो, परमाणुओं की प्रदेशार्थता संज्ञा है। यानी औदारिक शरीर के जो परमाणु है उसको प्रदेश कहा। अब बीच में क्या लिख, हाँ, औदारिक शरीर के स्कंधों को द्रव्य कहा और औदारिक शरीर के परमाणुओं को प्रदेश कहा। परमाणुओं की शरीर में, शरीर के स्कंध लिए उसमें, हाँ एक आकाश में। तो यहाँ कहते वो कितना है, तो अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों से अनंत गुणे हीन परमाणुओं की प्रदेशार्थता संज्ञा है। द्रव्य ने औदारिक शरीर स्कंध, स्कंध एक है, एक शरीर ऐसा है। अब इसी अर्थ पद के अनुसार ये स्कंध में भी उतने ही लिए हैं, नौकर्म स्कंध, अभवन से अनंत गुणे और सिद्धों से अनंत गुणे हीन। नौकर्म स्कंध वर्गणा भी ले सकते उसमें, अभी आएगी बात, हम आगे पढ़ेंगे ना। अब इसी अर्थ पद के अनुसार, ये तो उन्होंने पहले बता दिया कौन से कर्म में द्रव्य किसको कहना और प्रदेश किसको कहना। अब इसके अनुसार द्रव्य प्रमाणानुगम का कथन करने पर निर्देश दो प्रकार का है, ओग निर्देश और आदेश निर्देश। ओग की अपेक्षा प्रयोग कर्म, समवदान कर्म, अधक कर्मों की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता तथा ईर्यापद कर्म की प्रदेशार्थता कितनी है, यानी हर एक कर्म की प्रदेशार्थता कितनी है। पहले तो द्रव्यार्थता पूछी, प्रयोग कर्म, प्रयोग कर्म यानी योग वाले जीव लिए थे, समवदान कर्म यानी कर्मों का ग्रहण आठ या सात वगैरह, और अधक कर्मों में हमने देखे थे द्रव्यार्थता किसको, औदारिक शरीर के स्कंदों को कहा था, उसमें द्रव्यार्थता कितनी है तो अनंत है, प्रदेशार्थता भी अनंत है, और ईर्यापद कर्म की प्रदेशार्थता कितनी है तो अनंत है, क्योंकि वो कितने परमाणु ग्रहण करते हैं तो अनंत परमाणु ग्रहण करते हैं, इसलिए अनंत कहा। यथा अभी उसको समझा रहे हैं, प्रयोग द्रव्यता नहीं, हाँ हाँ वो संख्या रहेगी, यह इसलिए प्रदेशार्थता ली, जिसका अनंत प्रमाण है उसको एक साथ लिया उन्होंने। अब यहाँ समझाते हैं, देखो प्रयोग कर्म और समवदान कर्म की द्रव्यार्थता रूप से अनंत वे भाग कम सब जीव राशि ग्रहण की गई है। अनंत वा भाग क्यों कम किया, जिसको योग नहीं है ऐसे जीव उसमें से कम कर दिए, सिद्धों सिद्ध है और अयोगी चिन्ह है, इनकी प्रदेशार्थता भी अनंत है। प्रदेशार्थता में क्या लेना था, जीव के प्रदेश, तो यहाँ अनंत जीव है ना, योग वाले अनंत जीव है, तो प्रदेशार्थता भी अनंत है, क्योंकि इन जीवों को जो अनंत प्रमाण आया उसको घनलोक से गुणित करने पर, घनलोक से क्यों गुणा किया, एक जीव में घनलोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश होते हैं. घनलोक कहो या एक लोक कहो, एक ही बात है. प्रयोग कर्म की प्रदेशार्थता का प्रमाण उत्पन्न होता है और इन्हीं जीवों को उनके कर्म प्रदेशों से गुणित करने पर, क्योंकि जिनमें योग है वहां उसका समवदान कर्म भी है ना, 8 या 7 या 6 जो कुछ है ग्रहण भी कर रहे हैं, तो उनके कर्म प्रदेशों से गुणित करने पर समवदान कर्म की प्रदेशार्थता का प्रमाण उत्पन्न होता है. कितने कर्म परमाणु ग्रहण करते हैं उसकी बात आती है. देखो, जीवों की संख्या को लोक प्रमाण से गुणा करेंगे तो जीवों के प्रदेशों की प्रदेशार्थता वो आएगी, और उन्हीं को कर्म परमाणुओं के प्रमाण से, समय प्रबद्ध से गुणा करेंगे तो कर्मों की वो समवदान कर्म की प्रदेशार्थता आती है. इरियापथ कर्म की प्रदेशार्थता भी अनंत ही है, क्योंकि इसके द्वारा सकल वितराग जीवों के कर्म प्रदेशों का ग्रहण किया गया है. ये सकल वितरागी कौन कौन है? हाँ,
11वां,
ये यहाँ इरियापथ कर्म की बात चल रही है, तो 11, 12 और 13 को ही लेना, 14वें वाले को भी नहीं लेना. तो उनके कर्म प्रदेशों का ग्रहण किया गया है. अभी अधक कर्म की बात. अधक कर्म की द्रव्यार्थता अनंत है, क्योंकि वो औदारिक शरीर वाले हैं ना वहां इतने, क्योंकि और उसको वहां जीवों को नहीं लिया है. देखो, ऊपर भी जीवों को किस में लिया था? प्रयोग, तप और क्रिया में ही जीवों को लिया था, और यहां तो औदारिक शरीर के स्कंदों को लेना है. देखो, अधक कर्म की द्रव्यार्थता अनंत है, क्योंकि इसके द्वारा औदारिक शरीर के अनंत 9 कर्म स्कंदों का ग्रहण किया गया है, और इसकी प्रदेशार्थता भी अनंत है, क्योंकि एक एक 9 कर्म स्कंद में अनंत परमाणु पाए जाते हैं. यानी यहाँ 9 कर्म स्कंद से वो वर्गणा समझ सकते हैं, आहार वर्गणा, औदारिक शरीर वाली. यानी एक शरीर को एक स्कंद नहीं कहा यहाँ पर. इरियापथ कर्म और तपक कर्म की द्रव्यार्थता कितनी है? अभी इसका अर्थ है इरियापथ वाले और तप वाले जीव कितने हो गए? हाँ, प्रतिभा है, कुछ विचार कर सकेंगे? हाँ, थोड़े होगे ना, क्योंकि इरियापथ वाले में 11वां 12वां और 13वां ही लेना है, 3 ही गुणस्थान वाले लेने, तो संख्यात हो गए. और तप कर्म में भी संख्यात ही लेने, संख्यात है, क्योंकि महाव्रतधारी जीव मनुष्य पर्याप्तों को छोड़कर, तो पर्याप्त मनुष्य तो संख्यात ही होते हैं, और उसमें भी यहाँ तक पहुँचने वाले तो बिल्कुल गिने चुने, अन्यत्र नहीं पाए जाते.
तब कर्म में तो याद आ गया ना, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज लिए हैं,
हाँ,
उसमें से वो 14 गुणस्थान वाले घटा दे लेके 598
को. वो चौथे 14वें वाले का भी ध्यान इसमें उन्होंने इंक्लूड कर दिया था. 14वें वालों को भी ध्यान है, ध्यान है ना, क्योंकि शुक्ल ध्यान में वो 14वें वाले को भी लिया था. हाँ, हाँ, वो हो जाएगा, वो तो मैक्सिमम पॉसिबल. हाँ, अब तपक कर्म की प्रदेशार्थता कितनी है? तो असंख्यात है. अभी अनंत को नहीं लिया. तपक कर्म के प्रदेशार्थता, यानी तप कर्म जिन जीवों के है, ऐसे जीवों को उनके वो असंख्य ये लोक से गुणा करेंगे, क्योंकि संख्यात महाव्रतिधारियों को घनलोक से द्वारा, घनलोक के द्वारा गुणित करने पर संख्यात घनलोक उत्पन्न होते हैं. एक लोक भी ले लो तो असंख्यात होते हैं, तो ये संख्यात बार गुणा करेंगे तो भी असंख्यात ही हो जाएंगे. क्रियाकर्म की द्रव्यार्थता असंख्यात है. क्रियाकर्म में सभी समय दृष्टि लेना, और ऊपर वाले वो ध्यान वाले मुनिराज को छोड़ देना है, क्योंकि पल्ल्योपम के असंख्यात वे भाग मात्र सम्यक दृष्टियों में ही क्रियाकर्म पाया जाता है। ये सभी चारों गतियों के जीव मिलकर कितने, तो पल्ले के असंख्यात वे भाग मात्र हैं, कितने हो गए, और इसकी प्रदेशार्थता भी असंख्यात है, क्योंकि जितने जीव है उसको एक एक लोक से गुणा करो, क्योंकि पल्ल्योपम के असंख्यात वे भाग मात्र सम्यक दृष्टि राशि द्वारा घनलोक को गुणित करने पर असंख्यात लोकों की उत्पत्ति होती है। एक लोक, दो लोक और ये पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण लोक। इसी प्रकार काय योगी, औदारिक काय योगी, औदारिक मिश्र काय योगी, कार्मण काय योगी, अचक्षुदर्शनी, भव्य सिद्धिक, आहारक और अनाहारक जीवों का कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि औदारिक मिश्र काय योगियों में क्रियाकर्म की द्रव्यार्थता संख्यात है। इसका अर्थ क्या है? औदारिक मिश्र में मनुष्यों की, मनुष्यों में जन्मने वाले वो जो सम्यक दर्शन के साथ मनुष्यों में आने वाले जीव संख्यात हो गए। अब नरक गति में नारकियों में, ये तो उन्होंने अभी योग की अपेक्षा बात की, कौन से क्रिया कर्म है, कौन से कर्म में द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता कितनी, ये बता दिया। अब मार्गणाओं में बताएंगे। नरक गति में नारकियों में वहां कौन कौन से कर्म होते हैं, हमने पहले देखा था, प्रयोग कर्म, समवदान कर्म और क्रिया कर्म की। अभी उसमें द्रव्य प्रमाणानुगम लगाना है ना, पहले तो हमने है कि नहीं उतना बताया। पहले जो सत प्ररूपना हुई थी उसमें इतना ही बताया था कि नारकियों में ये तीन कर्म होते हैं, प्रयोग, समवदान और क्रिया कर्म। अब यहाँ उसका प्रमाण बताना है, द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता बतानी है। तो कहते नारक गति में नारकियों में प्रयोग कर्म, समवदान कर्म और क्रिया कर्म की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता कितनी है, तो कहते असंख्यात है। इतनी विशेषता, विशेषना है जरा। इतनी विशेषता है कि यानी द्रव्यार्थता कितनी है, तो द्रव्यार्थता में तो उनकी संख्या कितनी है, तो असंख्यात है, नारकी असंख्यात है ना। और प्रयोग कर्म में जो प्रदेशार्थता लेनी है तो जीव के प्रदेशों की लेनी है, तो प्रदेश भी असंख्यात सिद्ध होते हैं। समवदान को छोड़ो, क्रिया कर्म में भी उन जीवों के प्रदेश लेना है, वो भी असंख्यात होते हैं। परंतु समवदान कर्म में हम क्या लेते हैं प्रदेश में, कर्मों की संख, कर्मों के प्रमाणों की, वो अनंत वाली, हाँ, अभव्यों से अनंत गुना। तो कहते हैं इतनी विशेषता है कि समवदान कर्म की प्रदेशार्थता अनंत है, क्योंकि अभी जितने वो जीव है वो जीवों से कर्म वाला जो अनंत है उससे गुणित करना। इसलिए कहते हैं जगत प्रतर के असंख्यातवे भाग प्रमाण राशि द्वारा अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों से अनंत वे भाग प्रमाण कर्म प्रदेशों को गुणित करने पर अनंत राशि की उत्पत्ति होती है। क्योंकि सब नारकी जो है वो कितने हैं, प्रतर के, जगत प्रतर के असंख्यात वे भाग प्रमाण है, समवदान कर्म के लिए है ना, सभी नारकी लेना। इसी प्रकार प्रथम पृथ्वी में कथन करना चाहिए, जो सभी नारकियों का प्रमाण है प्रतर के असंख्यात विभाग, यहाँ भी वही होगा, कथन वही होगा, कथन वही है, क्योंकि वो तो कुछ जगत श्रेणी को मल्टीप्लाइड है ना। हाँ, बारह। अब दूसरी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक इसी प्रकार कथन करना चाहिए। विशेषता इतनी है कि इन पृथ्वियों में जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग से घनलोक के गुणित करने पर, वो तो सामान्य कथन लिया जगत श्रेणी का असंख्या तो अबा, वो बारवा मूले के दसवा के वो उसकी बात नहीं की। हाँ, तो प्रयोग कर्म की प्रदेशार्थता निकालने के लिए वहां की जो संख्या है जगत श्रेणी का असंख्या तो भाग मल्टीप्लाइड बाय लोक, घन लोक के गुणित करने पर प्रयोग कर्म की प्रदेशार्थता होती है, क्योंकि वहां पर प्रयोग कर्म की द्रव्यार्थता जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग मात्र पाई जाती है, दूसरे से सातवें नरक तक। और पहले नरक का कहो या सामान्य सभी का मिलकर कथन करो तो जगत प्रतर के असंख्यातवे भाग होता है। और पल्ल्योपम के असंख्यातवे भाग से घनलोक के गुणित करने पर क्रियाकर्म की प्रदेशार्थता होती है, ऐसा क्यों कहा होगा? समय दृष्टि नारकी, क्योंकि वहां पर क्रियाकर्म की द्रव्यार्थता पल्ल्योपम के असंख्यातवे भाग मात्र पाई जाती है, ऐसा नहीं कहा कि वहां इतने समय दृष्टि है, ये तो कर्म की भाषा में बोला। और जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग से मध्यम प्रमाण रूप से ग्रहण किए गए एक जीव के कर्म प्रदेशों के गुणित करने पर समवदान कर्म की प्रदेशार्थता होती है, क्योंकि ये समवदान कर्म में प्रदेशार्थता में वो कर्मों का प्रमाण अनंत होता है, उससे गुणा करना, क्योंकि वहां पर समवदान कर्म की द्रव्यार्थता जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग मात्र पाई जाती है, ये दूसरे से सातवें नरक तक की बात है। प्रक्षेपकः संक्षेपण इस सूत्र द्वारा यहां पर समीकर कर लेना चाहिए। यानी वहां जो अलग अलग नरकों की जो अलग अलग संख्या है तो उसका वो समीकरण करके वो उसकी संख्या निकालनी चाहिए। अब तीर्यंच गति की बात होगी। अब तीर्यंच गति में ओग के समान द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता होती है। इतनी विशेषता है यहां पर ईर्यापद कर्म और तपक कर्म नहीं होते, क्योंकि इन जीवों के महाव्रत का पाया जाना संभव नहीं है। इसी प्रकार असंयत तथा कृष्ण नील कापोत्लेशा वाले जीवों के भी कहना चाहिए। देखो, जिसको महाव्रत होगे उसको तो शुभलेशा ही होगी, इसलिए तीन अशुभ लेशा वालों में तपकर्म नहीं पाया जाएगा, और जिसको जो स्वयं असंयमी है उसके भी तप नहीं है, इसलिए वहां भी तप कर्म नहीं है, इरियापद कर्म भी नहीं होता। पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में, ये पहले बात आई थी ना पंचेंद्रिय तिर्यंच में, पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिमति और पंचेंद्रिय तिर्यंच लब्धि पर्याप्तक, ये तीन प्रकार के पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय तिर्यंच वो तिर्यंच योनिमति और पंचेंद्रिय अपर्याप्त ने लब्धि पर्याप्त, उसमें प्रयोग कर्म और समवदान कर्म द्रव्यार्थता की अपेक्षा जगत प्रतर के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। ये पंचेंद्रिय तिर्यंचों का प्रमाण बता दिया यहां, उसकी द्रव्यार्थता है जीवों की संख्या। पंचेंद्रिय त्रिक में पंचेंद्रिय तिर्यंच, उसमें तो सामान्य से सबको लेना, फिर पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिमति और पंचेंद्रिय तिर्यंच लब्धि अपर्याप्त, अकेला अपर्याप्त भी कहो तो लब्धि अपर्याप्त ही होता है। अब कहते प्रयोग कर्म की प्रदेशार्थता कैसे निकालेंगे? अभी हम प्रयोग में यानी योग वाले जीव हैं, तो तिर्यंचों में सभी योग वाले हो गए। तो जितने हमने जगत प्रतर के असंख्यातवे भाग देखे उसको एक जीव के प्रदेश जो लोक प्रमाण असंख्यात है उससे गुणा करेंगे तो ये असंख्यात लोक हो जाएंगे। तो जगत प्रतर के असंख्यातवे भाग मात्र घन लोक हैं। समवदान कर्म की प्रदेशार्थता, द्रव्यार्थता नहीं पूछ रहे, प्रदेशार्थता। तो क्या करना पड़ेगा, कर्म जो अनंत है उससे गुणा करना पड़ेगा, अनंत है, क्योंकि जगत प्रतर के असंख्यातवे भाग से एक जीव के समीकरण द्वारा उत्पन्न हुए कर्म प्रदेशों के गुणित करने पर अनंत राशि की उत्पत्ति होती है। ये समीकरण द्वारा ख्याल में है ना, जैसे हम त्रैराशिक करते हैं, एक जीव में इतने अनंत कर्म है तो इतने सारे जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग में कितने होंगे। अधक कर्म की द्रव्यार्थता अनंत है, क्योंकि एक जीव के एक समय में निर्जीर्ण होने वाले यानी निकल जाने वाले और निर्जरा के योग्य औदारिक नौ कर्म वर्गणाओं का, देखो ये औदारिक नौ कर्म वर्गणा है ना अरविंद भाई, औदारिक स्कंद कहा तो औदारिक नौ कर्म वर्गणाओं को लिया, एक समय में कितने खिरते हैं या सत्ता में भी कितने खिरने वाले ग्रहण किया गया है और उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है तो अनंत होती है, यानी वो स्कंद भी अनंत है और प्रदेश उससे भी अनंत गुणे हैं। क्योंकि अधक कर्म की द्रव्यार्थता द्वारा अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत वे भाग मात्र नौ कर्म प्रदेशों के गुणित कर्म में, पहले ऊपर जो देखी थी नौ प्रदेशों की वर्गणा थी और यहाँ है नौ कर्म के प्रदेश, अनंत राशि की उत्पत्ति होती है। इनके क्रिया कर्म की द्रव्यार्थता पल्योपम के असंख्यातवे भाग मात्र है, यानी अकेले तिर्यंचों में समय दृष्टि कितने हैं ये ख्याल होता है ना क्रिया कर्म के ऊपर से, तो पल्ले के असंख्यातवे भाग मात्र। और प्रदेशार्थता, प्रदेशार्थता कैसे निकालेंगे, ये जो संख्या आई उसको लोक से गुणा करना, प्रदेशार्थता असंख्यात लोक प्रमाण है, क्योंकि पल्योपम के असंख्यातवे भाग से घनलोक के गुणित करने पर यहाँ क्रिया कर्म की प्रदेशार्थता उत्पन्न होती है। ये ख्याल में आ रहे हैं ना प्रदेश कब और द्रव्य। हाँ, इसी प्रकार पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों के भी कथन करना चाहिए। ये अपर्याप्त ने यहाँ लब्धि अपर्याप्त समझना, क्योंकि पंचेंद्रिय त्रिक में हमने लब्धि अपर्याप्तों की बात की थी। इतनी विशेषता है कि इनके क्रियाकर्म नहीं होता, क्योंकि वहां कोई समय दृष्टि हो नहीं सकते लब्धि अपर्याप्तकों के। इसी प्रकार द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय इनके पर्याप्त अपर्याप्त, पंचेंद्रिय अपर्याप्त, त्रस अपर्याप्त, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, सासाधन सम्य दृष्टि और सम्यक मिथ्यादृष्टि जीवों का भी कथन करना चाहिए। कौन कौन सी मार्गणाओं में यही कर्म होते हैं उसकी बात उन्होंने एक साथ बता दी। वनस्पति कायिक को तो अलग लिया। विशेषता क्या होगी, अपनी अपनी प्रदेशार्थता का गुणकार जानना चाहिए, गुणकार ने अपनी अपनी द्रव्यार्थता जाननी चाहिए। अब ये तो दो गति हो गई, अभी मनुष्य गति में बात करेंगे। मनुष्य गति में मनुष्यों में प्रयोग कर्म और समवदान कर्म की द्रव्यार्थता जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। मनुष्यों की संख्या कितनी है, संख्या है कि असंख्यात है, वो अपर्याप्तों को कहाँ छोड़ना है। वो संख्या जो 29 है वो पर्याप्त मनुष्यों की भाई, ये तो हमने मनुष्यों में लिया। जब पर्याप्तों की अलग से बात करेंगे तो संख्यात में आएंगे, ख्याल है ना, यह तो मनुष्यों में कहेंगे तो ये कितने, देखो ना जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण। हाँ, पर्याप्त पर्याप्त मिलकर, यानी ऐसा नहीं समझना कि बाकी गति वाले ज्यादा है और हम कम है. पर्याप्त मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य संख्या. हम अपर्याप्त हमको भूल जाते हैं ना. हमारे भाई है सब. मनुष्य गति में, मनुष्यों में प्रयोग कर्म और समाधान कर्म की द्रव्यार्थता, द्रव्यार्थता नहीं उनकी संख्या, जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण है. और प्रयोग कर्म की प्रदेशार्थता, अभी हर एक को एक एक लोक से गुणा करना, असंख्यात लोक प्रमाण है. क्योंकि घनलोक से जगत श्रेणी के असंख्यातवें भाग को गुणित करने पर प्रयोग कर्म की प्रदेशार्थता का प्रमाण उत्पन्न होता है. मैं ख्याल में आता है ना ये बात. हाँ, अब समवदान करने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, उसकी प्रदेशार्थता. दोनों की द्रव्यार्थता तो समान है क्योंकि जीवों की संख्या तो उतनी है. हाँ, तो योग में तो वहां तो प्रदेश लिए और समवदान में कर्मों की संख्या लेनी है, तो अनंत से गुणा करना पड़ेगा. समवदान कर्म की प्रदेशार्थता अनंत है क्योंकि जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग से यथाशास्त्र कर्म प्रदेशों के गुणित करने पर, यथाशास्त्र ने शास्त्र में जैसे शास्त्रोक्त जिसको कहते हैं, जो वो अभव्यों से अनंत गुणे वगैरह कहते हैं, कर्म प्रदेशों से गुणित करने पर समवदान कर्म की प्रदेशार्थता करना उसको उत्पन्न होती है.
समाधान कर्म किसको नहीं होगा, ये आपने बोला 8-7
8-7-6. हाँ, जो कर्म को बांधता ही नहीं उसको लेना, अयोगी वाला लेना.
हाँ, इनके समाधान कर्म
नहीं होगा. हाँ,
इनको लेना पड़ेगा भगवान को.
उनको एक है ना, फिर भी वहाँ अगर ये कषाय की अपेक्षा लगाएंगे तो उनको भी नहीं होता ऐसा कहेंगे. कहीं कहीं ये बात बताइए ना कि उनके होता ही नहीं बंद, क्योंकि उसको वो योग से होने वाले को उसको बंद नहीं गिना.
हाँ,
उसको इरियापथ में ले लिया और इनको समवदान में लिया.
ऐसा भगवान को नहीं होता
अगर वो 8, 7 और 6 तीन को ही लिया है, एक वाले को लिया ही नहीं है. यानी 10वें वाले तक वो कषाय के साथ होने वाले बंद को ही समवदान में लिया है. उसको वो इरियापथ कर्म वाले हो गए और ये समवदान वाले हो गए.
तो समवदान कर्म सिर्फ 10वें तक का लेना.
हाँ, 10वें तक, क्योंकि समूह रूप से लिए ना, ग्रहण किए, इसलिए समवदान लिया. एक की बात नहीं करेंगे. देखो, शेष चार पद ओग के समान है मनुष्यों में. शेष चार पद कौन से, यहाँ प्रयोग कर्म और समवदान कर्म मनुष्यों में बताए. और कौन कौन से कर्म होते हैं मनुष्यों में, अधक कर्म है, तप कर्म है, इरियापथ कर्म है, और चौथा क्रिया कर्म है. तो ओग के समान जैसे पहले बताया था वैसे है. इतनी विशेषता है कि क्रिया कर्म की, क्रिया हुआ है, क्रिया कर्म की द्रव्यार्थता, मनुष्यों की बात चल रही है ना, संख्यात है. यानी समय दृष्टि भी ले लेंगे चौथे पांचवे वाले और ऊपर के भी सभी, तो भी वो संख्यात ही होंगे. और प्रदेश, क्योंकि हम देखते हैं मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 700 करोड़ चौथे गुणस्थान वाले के, और तेरहवें वाले के 13 नहीं, मुझे पांचवा कहना था, पांचवें वाले के 13 करोड़, वो भी संख्यात में आए. और मुनियों की सब आगे वाली ले लो. हाँ, तीन कम. तो क्रिया कर्म तो वो आगे ध्यान वाले लेने नहीं. तो द्रव्यार्थता संख्यात है और प्रदेशार्थता असंख्यात है, क्योंकि संख्यात जीव मल्टीप्लाइड बाय लोक. क्योंकि संख्यात जीवों से घनलोक के गुणित करने पर क्रिया कर्म की प्रदेशार्थता उत्पन्न होती है. इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य नियमों में जानना चाहिए. इतनी विशेषता है कि प्रयोग कर्म और समवदान कर्म की द्रव्यार्थता संख्यात है. अभी कहाँ पर आए, संख्यात में. पहले सामान्य मनुष्यों की बात की थी तभी असंख्यात लिए थे, क्योंकि वहाँ अपर्याप्तों को साथ में लिया था भाई. अब ये संख्यात पर आते हैं. तथा प्रयोग कर्म की प्रदेशार्थता, प्रदेशार्थता के लिए क्या करना पड़ेगा, असंख्यात से गुणा करेंगे, लोक से, संख्यात लोक प्रमाण है, और समवदान कर्म की प्रदेशार्थता अनंत है, क्योंकि संख्यात अंकों से एक जीव के प्रति प्राप्त कर्म प्रदेशों के गुणित करने पर चाहिए, गणित हुआ है, यानी एक जीव के साथ इतने कर्म प्रदेश, तो संख्यात जीवों के साथ कितने हो गए, तो अनंत ही हो गए वे, गुणित करने पर समवदान कर्म की प्रदेशार्थता उत्पन्न होती है। मनुष्य अपर्याप्तकों का भंग, देखो उसमें भी मनुष्य शनि में भी वो सब तप कर्म क्रिया कर्म सब लगा, एरियापथ वगैरह, क्योंकि वहां भाव स्त्री वेद वाला जीव लेना है जो आगे चलकर ऊपर के गुणस्थानों में भी जाता है। अभी मनुष्य अपर्याप्त जो है उसका भंग पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तों के समान है। यह ख्याल में आता है ना, यह लब्धि अपर्याप्तकों की ही बात है, मनुष्य लब्धि अपर्याप्तक, और हमने पहले तिर्यंच में जो पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्तक की बात देखी थी वैसा इसका भी है।
अभी प्रयोग कर्म केवल 13वें गुणस्थान तक लगाना
है। हाँ, 13वें तक ही, योग 13वें तक है, तो प्रयोग कर्म 13वें तक ही लेना, हाँ आगे नहीं, और समवदान भी वो 10वें तक लगेगा, आगे वो एरियापथ वाला लगेगा। ये देखो इतना हम अलग अलग देखते तो इसलिए अभी जो जरा फिट हो गया। अब ये तो गति मार्गणा हो गई, अब इंद्रिय मार्गणा में पंचेंद्रिय द्विक का कथन सामान्य मनुष्यों के समान है। पंचेंद्रिय द्विक में पंचेंद्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों लेना। इतनी विशेषता है कि इनमें क्रियाकर्म की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता का कथन ओघ के समान है। द्विक ने पर्याप्त अपर्याप्त, क्योंकि पंचेंद्रिय इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा पंचेंद्रिय इतना ही कहते, वो संगी असंगी उसका भेद वहां नहीं करते। ये द्विक में तो पर्याप्त अपर्याप्त लेना पड़ेगा, क्योंकि क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि सामान्य मनुष्य के समान तुलना की उसकी, सामान्य मनुष्यों में पर्याप्त अपर्याप्त दोनों आते हैं ना, इसलिए वो इस यहाँ भी वो पर्याप्त अपर्याप्त को ही लेना पड़ेगा। तो सामान्य मनुष्यों के समान है, तो उसमें क्या डिफरेंस है, विशेषता इतनी है कि इनमें क्रियाकर्म की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता का कथन ओघ के समान है, क्योंकि वहां पंचेंद्रिय चारों गतियों के लेना, तो चारों गतियों के पंचेंद्रिय, ये जब हमने क्रियाकर्म में चारों गति के कितने देखे थे, पल्ल्य के असंख्यात विभाग प्रमाण देखे थे सब मिलकर भी, और अकेले तिर्यंच गति में भी कथन तो वही था। असंख्या तिर्यंच, हाँ सम्यक दृष्टि, पंचम गुण स्थान वर्ती तिर्यंचों में तो संख्या बहुत है, और यहाँ पर ये सम्यक दृष्टियों का ऐसा ये करना नियोग पढ़ना चाहिए। नहीं तो ये सम्य दर्शन की इतनी महानता आती है, भगवान से भी बढ़कर हो जाते हैं ना। देखो यहाँ प्रयोग कर्म आदि पदों की प्रदेशार्थता का गुणकार जानकर कहना चाहिए, यानी सभी जीवों की जो संख्या होगी उसको जानकर कहना चाहिए। इसी प्रकार यानी पंचेंद्रियों को जो हमने इंद्रिय मार्गणा में जो हमने एक इंद्रियों के इतने हैं, द्वे इंद्रियों के इतने, ये सब जो हमने देखे थे, तो त्रस हम त्रस राशि पूरी ले लेते हैं, एक इंद्रियों को अलग निकालना, क्योंकि एक इंद्रिय अनंत है, त्रस राशि में से चार भाग करेंगे, द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय, हाँ ये चार में विभाजित होते हैं। सामान्य रूप से हम चार भाग करेंगे, उसमें द्विंद्रियों के ज़्यादा हो गए वगैरह वो बात अलग है। इसी प्रकार त्रसद्विक, यहाँ भी द्विक यानी पर्याप्त अपर्याप्त लेना, क्योंकि अभी यहाँ दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। पांच मनोयोगी, मनोयोगी में भी सभी संगी पंचेंद्रिय आ जाएंगे ना, पांच वचन योगी, स्त्री वेदी, पुरुष वेदी, ये स्त्री वेदी पुरुष वेदी भी पंचेंद्रियों के समान में, क्योंकि पंच एक सामान्य होता है, सत्य असत्य उभय अनुभय ये तो चार है और सबको मिलकर एक सामान्य कहें, यानी जिसके पांचों ही योग है, मनोयोग है। आप कहेंगे वचन योगी में द्विंद्रियों को लेना कि नहीं लेना, द्विंद्रियों को देखो, जिसको पांचों है उसको नहीं ले सकते, क्योंकि द्विंद्रियों को पांचों वचन योग नहीं हो गए, वचन योग होगा श्रीवेदी पुरुषवेदी आभि निबोधिक ज्ञानी, क्योंकि ये भी पंचेंद्रियों में पॉसिबल है, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, चक्षु दर्शनी, अवधि दर्शनी, पीत लेशा वाले, पद्म लेशा वाले, शुक्ल लेशा वाले, ये शुभ लेशा वालों को क्यों ग्रहण किया, क्योंकि चतुरिंद्रिय तक सभी जो है वो तीन अशुभ लेशा वाले ही होते हैं, उनमें शुभ लेशाएं नहीं पाई जाती। शुक्ल लेशा वाले सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि, उपशम सम्यक दृष्टि और संगी जीवों के जानना चाहिए, यानी वो पंचेंद्रिय के समान ही ये सब बन गए, इसलिए इसको एक साथ ले लिया। इतनी विशेषता है कि अपने अपने पदों और प्रदेशार्थता के गुणकार का जानकर कथन करना चाहिए, उसमें उनकी संख्या अलग अलग हो सकती है, जैसे जो पंचेंद्रिय जीवों की संख्या से त्रस जीवों की संख्या तो ज्यादा हो जाएगी, इस तरह से उसमें डिफरेंस जो है वो समझना। अब आगे देवगति की बात, देवगति में देवों में भवनवासी व्यानवंतर और ज्योतिषियों से लेकर सौधर्म और ऐशान कल्प तक के देवों में, वहाँ संभव पदों की द्रव्यार्थता यानी वहाँ के जीवों की भी जो संख्या है, और प्रदेशार्थता का कथन नारकियों के समान है। हाँ, प्रतर की असंख्यात विभाग, क्योंकि मेजॉरिटी तो ज्योतिषियों में है, ये नहीं भवनत्रिक मिलते तो मैक्सिमम संख्या तो वहीं प्रकटित होती है, और यहाँ भी नीचे के स्वर्गों में संख्या ज़्यादा है, ऊपर ऊपर घटती चली जाती है, तो सौधर्म ईशान को भी उसमें लिया। हाँ, और ऊपर जो है वो तो घटते चले जाते हैं। हाँ, सनत कुमार से लेकर अपराजित तक के देवों में, वहां संभव पदों की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता का कथन दूसरी पृथ्वी के समान है, यानी श्रेणी के असंख्या देवा। किसको छोड़ा इसमें से? सौधर्म वाले को, ये ऊपर सौधर्म है, सर्वार सिद्धि वाले को छोड़ा है, क्यों? वो संख्यात है जी, इसलिए वैक्रिक, हाँ, वैक्रिक का योगी और वैक्रिक मिश्र का योगियों का कथन देवों के समान है। सर्वार्थ सिद्धि में सब पदों का कथन मनुष्य पर्याप्तकों के समान है, क्योंकि वो संख्या थे इसलिए उसके समान ऐसा लिया। बाकी बात कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत होरो। जोशी सर।